بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتاگرن، زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ کارکرم کا آرمبھ ہم سورہ حجرات کی 10ویں اور 11ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں، اور تلاوت کر رہے ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرا دیا کرو، اور ایشور سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر دیا کی جائے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے کوئی گٹ دوسرے گٹ کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اچھے ہوں، اور نہ استریاں دوسری استریوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے اچھی ہوں، اور آپس میں نہ ایک دوسرے پر ویانگ کرو، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے پشچات اوگیا کا نام ہی برا ہے، اور جو لوگ اس بات سے پشچاتاپ نہ کریں وہی اتیاچاری ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا یہ پرسارن آپ چارپے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج بدھوار ہے، مرداد کی 5، ذی‌الحجہ کی 27 اور جولائی کی بھی 27 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد راجنیتک چرچا، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے شوریہ گاتھا، اور انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تازہ اور وستت خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ اب آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ورشٹھ نیتا نے کہا ہے کہ ایران کی پرتیبھاشالی مہیلاؤں نے پشچمی سنسکرتی پر زوردار چوٹ لگائی ہے۔ پرمانو سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی اور ایران پر لگے پرتیبندھوں کو ہٹانے کا مدعا ایک بار پھر چرچا میں ہے۔ بھارت میں ستا پکش اور وپکش کے بیچ زبردست سنگھرش جاری ہے۔ بنگلہ دیش بھی ان دیشوں کی سوچی میں شامل ہو گیا ہے جو آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہے ہیں۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
ایران کی اسلامی کرانتی کا ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حجاب کے مدعے پر کہا ہے کہ ایران کی سمان جنک اور پرتیبھاشالی مہیلاؤں نے پشچمی سنسکرتی کے جھوٹ اور دعووں پر ایک زوردار چوٹ لگائی ہے جس سے وہ بہت کرودھت ہیں۔ بدھوار کو دیش بھر کے امام جمعہ سے ملاقات میں ورشٹھ نیتا نے کہا، اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد سے ہی اس طرح کے مدعے اٹھائے جاتے رہے ہیں اور حالیہ دنوں میں ایک بار پھر حجاب کے بہانے سے وہی ناکام کوشش دہرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، کچھ ورشوں پہلے ایک بیٹھک میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ مہیلاؤں کے بارے میں پشچم کے مقابلے میں آپ بچاؤ کیسے کریں گے۔ میں نے جواب دیا، میں بچاؤ نہیں کروں گا بلکہ حملہ کروں گا۔ جن لوگوں نے مہیلا کو ایک وستو بنا کر پیش کیا ہے وہ بچاؤ کریں اور جواب دیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک بار پھر امریکی اور برٹش میڈیا اور ان کے ایجنٹ حجاب کے بہانے کیوں حملہ ور ہیں، اور کیا واسطو میں پشچم ایرانی مہیلاؤں کے ادھیکاروں کا رکشک ہے۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، پشچمی لوگ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بس میں اگر ہوتا تو وہ ایرانی راشٹر پر پانی بھی بند کر دیتے، جس طرح سے انہوں نے بچوں کی دواؤں پر بھی پرتیبندھ لگا دیا ہے۔ کیا وہی لوگ ایرانی مہیلاؤں کے شبھ چنتک ہو سکتے ہیں؟ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ پچھلے 4 دشکوں سے ایرانی مہیلائیں اسلامی حجاب میں وبھن کھیتروں میں پرگتی کر رہی ہیں اور سفلتا کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔
परमाणु मामले में ईरान पर लगे गैर कानूनी अमरीकी प्रतिबंधों को हटवाने का विषय चर्चा में है, जबकि ईरान ने अपने उसूली स्टैंड को फिर दोहराया है। यूरोप ने इस बीच नया मसौदा तैयार करके पेश कर दिया है, जिस पर ईरान और अमरीका की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यूरोपीय संघ ने मंगलवार को ऐलान किया कि उसने ईरान का परमाणु समझौता बहाल करवाने के लिए नया मसौदा तैयार किया है। ईरान ने कहा है कि वो अपनी राय पेश करेगा, जबकि अमरीका का भी कहना है कि मसौदे पर प्रतिक्रिया के बारे में वो विचार कर रहा है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रभारी जोसेप बोरेल ने कहा कि हमने मेज पर नया दस्तावेज रख दिया है, जिसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और JCPOA को पूरी तरह बहाल करने की प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा मौजूद है। ईरान के वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार अली बाकेरी ने ट्वीट किया कि पिछले हफ्ते अन्य पक्षों से परमाणु मुद्दे पर वियना वार्ता को लेकर बड़ी सार्थक बातचीत हुई। यूरोपीय संघ के कन्वीनर ने वार्ता को परमाणु परिणाम तक पहुंचाने के बारे में अपने विचार पेश किए हैं, मगर प्रारूप और विषय वस्तु के एतबार से वार्ता को परिणाम तक ले जाने के बारे में ईरान की अपनी परिकल्पना है, जिसे वो पेश करेगा। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि बोरेल ने जो दस्तावेज पेश किए हैं, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और इस बारे में अपना जवाब देंगे।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने कहा है कि ज़ायोनियों की वजह से इलाके में अशांति और अस्थिरता फैलती है। संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोन बातचीत में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने आपसी सहयोग के विस्तार और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए इसराइल की विनाशकारी भूमिका पर टिप्पणी की। हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने ईरान और इमारात के बीच बढ़ते सहयोग का स्वागत किया और इसराइल के बारे में बात करते हुए कहा कि ज़ायोनी शासन ने कोशिश की कि हालिया जिद्दा शिखर बैठक को इलाके के लिए एक संकट में बदल दे, लेकिन बैठक में भाग लेने वाले क्षेत्रीय देशों की समझदारी की वजह से क्षेत्रीय सहयोग, विकास और सुरक्षा जैसे विषयों पर अच्छी प्रगति हुई। विदेश मंत्री ने परमाणु समझौते से संबंधित वार्ता के बारे में बात करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ वार्ता को नतीजे तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है और हम भी अच्छे नतीजे तक पहुंचने के लिए गंभीर हैं। टेलीफोन वार्ता में इमारात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने दोनों देशों के संयुक्त हितों पर बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के अधिकारी चाहते हैं कि आपसी रिश्ते और सहयोग में विस्तार हो।
भारत में जबरदस्त राजनीतिक संघर्ष के हालात नजर आने लगे हैं। संसद के भीतर भी और सड़क पर भी विपक्ष की ओर से संघर्ष देखने में आ रहा है। संघर्ष दिल्ली में भी हो रहा है, बेंगलुरु में भी हो रहा है और कई अन्य जगहों पर भी संघर्ष के हालात हैं। सरकार पर आरोप है कि वो एजेंसियों को गैर कानूनी रूप से विपक्ष के आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार दूसरे दिन हो रही पूछताछ पर नई दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर विपक्ष को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि देश के अंदर ईडी का तमाशा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी जी को बुलाया गया और आज तीसरे दिन सोनिया जी को बुलाया है। देश के अंदर ईडी का आतंक है और ये जो आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। उन्होंने ईडी के बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ईडी सरकारें गिराने का काम कर सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी केंद्र सरकार के रुख की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे विपक्ष नहीं डरने वाला। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा करने के आरोप में 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये सांसद बढ़ती महंगाई पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ है, लेकिन राज्यसभा में जब विपक्षी सांसद महंगाई की चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे तो उपसभापति हरिवंश ने उन्हें साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वो ऐसा करेंगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्षी सांसद चुप नहीं हुए और उपसभापति ने TMC के 7, DMK 6, TRS के 3, CPM के 2 और CPI के एक सांसद समेत 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया।
पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से पाक चीन आर्थिक कॉरिडोर सीपेक से संबंधित टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा है कि ये बड़ी परियोजना को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीपेक बड़ा बदलाव लाने वाला मंसूबा है जिससे क्षेत्र की स्थिरता और विकास में मदद मिलेगी। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े सीपेक मंसूबे का महत्व बहुत ज्यादा है। प्रवक्ता का कहना था कि चीन के निवेश से पाकिस्तान को ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में समस्याओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीपेक के बारे में संदेह पैदा करने की भारत की कोशिश बड़े घटिया एजेंडे का हिस्सा है और इस एजेंडे ने दक्षिणी एशिया के इलाके में दशकों से विकास का रास्ता रोक रखा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीपेक के बारे में भारत का ये बयान कि इससे स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है।
बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 4.5 अरब डॉलर के कर्ज की मांग की है ताकि खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखा जा सके। बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है और ये दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश ने डीजल से चलने वाले पावर प्लांट को बंद कर दिया है ताकि तेल के आयात बिल को कम किया जा सके। IMF के पास जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस बीच मंगलवार को बांग्लादेश में 8 विकासशील देशों के कारोबारियों और अधिकारियों की बैठक हुई है। मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने D8 के बैनर तले मंगलवार को वैकल्पीय वित्तीय कारोबार को लेकर बात की। इसमें एक दूसरे की मुद्रा में लेन देन पर भी विचार किया गया ताकि विदेशी मुद्रा भंडार के दबाव से मुक्त हुआ जा सके। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने कहा कि D8 देशों की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की है। उन्होंने कहा कि D8 देश मुक्त व्यापार समझौता और आपसी कारोबार बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं।
इसराइली सेना के एक जनरल हिजबुल्ला महासचिव की धमकियों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए ज़ायोनी शासन से कहा है कि वो इन धमकियों को गंभीरता से ले। गौरतलब है कि सोमवार को हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने कैश ऑयल एंड गैस फील्ड पर इसराइल के कब्जे के हवाले से चेतावनी देते हुए कहा था कि इस संबंध में हिजबुल्ला की प्रतिक्रिया इसराइल और अमरीका के रवैये पर निर्भर है। उन्होंने कहा था कि हिजबुल्ला इस ऑयल फील्ड से इसराइल को तेल निकालने से रोकने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अलमयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस चैनल से बात करते हुए नसरुल्ला का कहना था सिर्फ कैरिश ही नहीं बल्कि हर फील्ड हिजबुल्ला की पहुंच में है और इसराइल में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो इस्लामी प्रतिरोध के गाइडेड मिसाइलों की रेंज में नहीं हो।
इसराइल के युद्ध मंत्री बेनी गांस ने एक बयान दिया है कि जिसे ये साफ जाहिर है कि रूस ने सीरिया के पटल पर इसराइल को सजा देना शुरू कर दिया है। यूक्रेन जंग के मसले में इसराइल का स्टैंड पूरी तरह रूस के खिलाफ है और वो पश्चिम का साथ दे रहा है जिस पर रूस बहुत ज्यादा नाराज है। इसराइल के युद्ध मंत्री बेनी गांस ने कहा कि रूस ने सीरिया में पहली बार S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने ट्वीट करके कहा है कि मैंने कुवैत, यूएई, ओमान, कतर और इराक के अपने समकक्षों से टेलीफोनी वार्ताएं की हैं। अमीर अब्दुल्लाहिया ने लिखा है कि इन विदेश मंत्रियों से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्री ने लिखा है कि संबंधों को विकसित करना और आपसी समस्याओं का समाधान मधुर संबंधों की जरूरत है। नैन्सी पेलोसी अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा की प्रमुख हैं। वो इस सदन की पहली प्रमुख महिला हैं और ताइवान की खतरनाक यात्रा करने पर तुली हुई हैं। नेशनल हेराल्ड कथित भ्रष्टाचार मामले में आज भी 3 घंटे से अधिक समय तक सोनिया गांधी से ईडी में पूछताछ हुई। आज भी कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि उनके मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, परंतु वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।
आज हम जब हमारी आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में चर्चा हो।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने ट्वीट करके कहा है कि मैंने कुवैत, यूएई, ओमान, कतर और इराक के अपने समकक्षों से टेलीफोनी वार्ताएं की हैं। अमीर अब्दुल्लाहिया ने लिखा है कि इन विदेश मंत्रियों से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्री ने लिखा है कि संबंधों को विकसित करना और आपसी समस्याओं का समाधान मधुर संबंधों की जरूरत है। समीक्षा पेश करें साथ ही कायम रिज़वी।
ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है कि मैंने कुवैत, यूएई, ओमान, कतर और इराक के अपने समकक्षों से टेलीफोन पर बात की है। अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान ने लिखा है कि इन विदेश मंत्रियों से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ईरान के विदेश मंत्री ने लिखा है कि संबंधों को विकसित करना और आपसी समस्याओं का समाधान मधुर संबंधों की जरूरत होती है। उनका कहना था कि ईरान अपने पड़ोसियों के साथ परस्पर सहयोग में वृद्धि करेगा। अब्दुल्लाहियान के अनुसार क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को विदेशी रोक नहीं पाएंगे। ईरान की 13वीं सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता दे रखी है। ये सरकार पड़ोसियों, विशेषकर फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों के साथ संबंधों में विस्तार के साथ ही भ्रांतियों के निवारण के लिए भी प्रयासरत है। ईरान के पड़ोसी देश भी ईरान के महत्व को समझते हुए इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ अपने संबंधों को विस्तृत करने की कोशिशें कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, ईरान के साथ कुछ आंशिक मतभेदों के बावजूद कुवैत ने फैसला किया है कि वो तेहरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा। इसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कुवैत का नया राजदूत तेहरान आ रहा है। 7 वर्षों के बाद संयुक्त अरब इमारात ने भी ये फैसला किया है कि वो कूटनीतिक क्षेत्र में ईरान के साथ अपने रिश्तों को राजदूत के स्तर तक बढ़ाएगा। इसी संदर्भ में यूएई के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के संबंधों के बारे में ये कहा है कि इन दो पड़ोसी देशों में परस्पर संबंध विशेष महत्व रखते हैं। इसी बीच इराक की मध्यस्थता में बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाली वार्ता और उसके परिणामों के प्रति दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद मिस्र और जॉर्डन ने भी ईरान के साथ संबंधों को विस्तृत करने की इच्छा व्यक्त की है। क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को मजबूत करने के लिए ये प्रयास ऐसी स्थिति में जारी है जब अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी हालिया मध्य पूर्व यात्रा के दौरान ईरान के विरुद्ध घिसे पिटे दावे करके ये प्रयास किया कि इस प्रकार से वो अवैध जायोनी शासन की स्थिति को मजबूत करते हुए ईरान के विरुद्ध एक क्षेत्रीय गठबंधन तैयार करे। इस प्रकार से ईरान को अलग थलग करने की अमरीकी कोशिश पूरी तरह से विफल हो गई। क्षेत्रीय देश इस वास्तविकता को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ईरान जैसे प्रभावशाली देश को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ पड़ोसी देशों के संबंधों में विस्तार की सबसे बड़ी बाधा अमरीका था और इसराइल मतभेदों को हवा दिया करता था, किंतु क्षेत्र में अमरीका की लगातार पराजयों के बाद ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय देशों ने ईरान के साथ अपने संबंधों को विस्तृत करने का मन बना लिया है।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
نینسی پیلوسی امریکی کانگریس میں پرتندھی سبھا کی پرمکھ ہیں۔ وہ اس سدن کی پہلی پرمکھ مہیلا ہیں اور تائیوان کی خطرناک یاترا کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ چین نے دھمکی دی ہے کہ اس یاترا کا جواب سینک کارروائی کے روپ میں بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے نہ جائیں تو بہتر ہے۔ رپورٹ پیش کریں ساتھی احمد عباس۔
نینسی پیلوسی امریکی کانگریس میں پرتندھی سبھا کی پرمکھ ہیں۔ وہ اس سدن کی پہلی مہیلا پرمکھ ہیں اور تائیوان کی خطرناک یاترا کا ارادہ رکھتی ہیں۔ چین نے دھمکی دی ہے کہ اس یاترا کا جواب سینک کارروائی کے روپ میں بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ بہتر ہے کہ وہاں نہ جائیں۔ چینی ودیش منتری نے کہا کہ راشٹریہ اکھنڈتا کا اُلنگھن برداشت نہیں۔ جو بائیڈن نے اس معاملے میں سینا کو بیچ ملاتے ہوئے کہا کہ یہ یاترا سینا کی نظر میں درست آئیڈیا نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ سوال میں نے چینی سرکاری ٹی وی کے پترکار دو جیجو سے پوچھا۔
The United States behave on...
پترکار نے کہا کہ یہ اس پر نربھر ہے کہ امریکہ تائیوان کے مسئلے کو کہاں تک لے جانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے ورتمان رویے نے چین اور روس کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب کر دیا ہے۔ تائیوان کے بالکل قریب سینک ابھیاس کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے۔ تائیوان کی 24-25 ملین کی آبادی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ کیڑا ایک رتھ کی آگے بڑھنے کی پرکریا کو روک نہیں پائے گا۔ چینی ادھیکاریوں کا سور کٹھور ہوتا جا رہا ہے اور ان کی طرف سے بار بار کٹھور بیان دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اگر نینسی پیلوسی تائیوان جاتی ہیں تو یہ بھی سمبھو ہے کہ چین تائیوان اسٹریٹ کو بند کر کے اس گھٹنا پر اپنی پرتکریا دکھائے یا کوئی اور قدم اٹھائے جس کے بارے میں بھوشیہ کا سمے ہی بتا سکے گا۔ بہرحال اس سمے کے حالات تناؤ بڑھنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ نیو یارک سے آئی آر آئی بی کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ۔
نیشنل ہیرالڈ کتھت بھرشٹاچار معاملے میں آج بھی 3 گھنٹے سے ادھک سمے تک سونیا گاندھی سے ای ڈی میں پوچھ تاچھ ہوئی۔ آج بھی کانگریس کے کئی نیتاؤں کو گرفتار کیا گیا۔ کانگریسی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ان کے منوبل کو توڑنے کے لیے سرکار اس پرکار کی کارواہی کر رہی ہے، پرنتو وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
نیشنل ہیرالڈ کتھت بھرشٹاچار معاملے میں آج تیسرے دن بھی کانگریس کی انتریم ادھیکش سونیا گاندھی سے پرورتن ندیشالے میں پوچھ تاچھ کی گئی، جو 3 گھنٹے سے ادھک سمے تک چلی۔ سونیا گاندھی کو اس سلسلے میں آگے پوچھ تاچھ کے لیے فی الحال نہیں بلایا گیا ہے۔ سونیا گاندھی سے پرورتن ندیشالے کی پوچھ تاچھ کے ورودھ میں کانگریس سانسدوں نے سنسد سے وجے چوک تک مارچ نکال کر ورودھ پردرشن کیا، جنہیں حراست میں لے لیا گیا۔ کانگریسی نیتا جے رام رمیش نے کہا کہ بھاجپا دوارا پرتیشودھ کی راجنیتی کا کھلے عام پردرشن کیا جا رہا ہے۔
آج بھی ہمارے کانگریس سانسدوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ لوک تنتر کی ہتیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر مہنگائی اور جی ایس ٹی پر بحث نہیں ہونے دے رہی ہے مودی سرکار۔ جو ہماری ایجنسیاں ہیں، سرکاری ایجنسیاں، اس کا دروپیوگ ہو رہا ہے۔ راجنیتک پرتیشودھ کا پردرشن ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہمارے آواز ہم اٹھا رہے ہیں اور ہمیں آج پھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب بھگوان ہی جانے، پردھان منتری ہی جانے، گرہ منتری ہی جانے، ہمیں کہاں لے جائے گا۔ آج
کل بھی کانگریسی سانسدوں نے راہل گاندھی کے نیتتو میں ای ڈی کاروائی کے ورودھ میں وجے چوک پر دھرنا دیا تھا، جنہیں پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ کانگریسی نیتا ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ای ڈی بار بار دھمکی دے رہی ہے اور کانگریس کو بدنام اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانگریس کارکرتاؤں کا منوبل توڑنے کا پریاس ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है और विपक्ष को आवाज उठाने और धरना देने से रोका जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का इस प्रकार का रवैया लोकतंत्र के हित में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज भी विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के रवैये की निंदा की। पार्टी मुख्यालय के बाहर जहां भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, आज भी कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के विरोध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें। उधर कांग्रेस मुख्यालय में गुट 23 के नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और ईडी पर जमकर हमला बोला और कहा कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी का उपयोग राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। उधर विपक्षी दलों को आज उस समय झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने पीएमएलए एक्ट और ईडी के अधिकारों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। शमशाद कासमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोतो, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तैनान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा की अंतिम कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि इस कार्यक्रम में हमने इस बात से आपको अवगत कराने का पूरा प्रयास किया कि वर्ष 1980 के दशक में सद्दाम ने क्यों हमला किया था और ईरानी सेना और स्वयं सभी बलों ने उसका कैसे मुकाबला किया और हमले के आरंभ में इराकी सेना ने ईरान के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, ईरान के बहादुर सैनिकों ने उसे कैसे आजाद कराया।
11 फरवरी वर्ष 1979 को ईरान की इस्लामिक क्रांति सफल हुई थी। इस क्रांति की सफलता के बाद इराक द्वारा ईरान पर थोपी जाने वाली जंग क्षेत्र और ईरान की सबसे बड़ी घटना थी। इराक द्वारा ईरान पर थोपी गई जंग को समाप्त हुए 3 दशक से अधिक का समय बीत रहा है और इस जंग के परिणाम आज भी ईरान और क्षेत्र में मौजूद हैं। 8 वर्षों तक ईरान इराक युद्ध चला, जिसकी वजह से ईरान के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और सैन्य क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए और वो ईरान में राष्ट्रीय एकजुटता का कारण बना। ईरान इराक युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान ने प्रतिरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, इस प्रकार से कि आज किसी भी देश के अंदर ईरान पर हमला करने का साहस नहीं है।
उसकी वजह ईरान की सैन्य क्षमता है। अमेरिकी सैनिकों ने ड्रोन हमला करके जनरल कासिम सुलेमानी को जो शहीद कर दिया था और उस आतंकवादी हमले के बाद ईरान ने इराक में आधुनिकतम हथियारों से लैस अमेरिका की सैनिक छावनी ऐनुल असद पर कई मिसाइल मारे थे, इस प्रकार से कि सैन्य छावनी ऐनुल असद का कुछ हिस्सा मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गया था। मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ कोई हमला नहीं किया, जबकि अमेरिकी अधिकारी ईरान के जवाबी हमले से पहले कहते थे कि अगर ईरान ने कोई हमला किया तो ईरान में 52 ठिकाने उसके निशाने पर हैं। उनकी इस गीदड़ भभकी के जवाब में ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि उन 52 ठिकानों को हम बताएंगे।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے ایران پر کیوں حملہ نہیں کیا جبکہ اس کے پاس دنیا کے آدھونکتم ہتھیار موجود ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کی رکشا کشمتا کا اندازہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر ایران سے یدھ ہوگا تو اسے اپورنیہ کشتی کا سامنا ہوگا۔ یہی نہیں، امریکہ کو بھلی بھانتی پتا ہے کہ اگر اس نے ایران سے یدھ کیا تو فارس کی کھاڑی اور دوسرے دیشوں و کھیتروں میں اس کی جو دھاک اور روب سب ختم ہو جائے گا۔ اسے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ جو لمبی لمبی ڈنگے مار کر دوسرے وشیش کر فارس کی کھاڑی کے دیشوں کو ہتھیار بیچتا ہے، اس کے گراہکوں میں دھیان یوگیہ کمی آ جاتی اور جو دیش اسے دنیا کی مہاشکتی سمجھتے ہیں ان کے سامنے بھی اس کی واستوکتا سامنے آ جاتی۔ دوسرے شبدوں میں، ایران نے عراق میں آدھونکتم ہتھیاروں سے لیس امریکہ کی سینے چھاونی انوال اسد پر حملہ کر کے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔
ایران نے جس وقت عراق میں امریکہ کی سینے چھاونی پر حملہ کیا تھا، بہت سے دیشوں و لوگوں کو وشواس نہیں آ رہا تھا کہ ایران نے ایسا کیا ہے، کیونکہ عام طور پر کسی بھی دیش کے اندر امریکہ کی سینک چھاونی پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہے اور ایران کا یہ ساہسی کام اتہاس میں لکھا جائے گا کہ اس نے عراق میں آدھونکتم ہتھیاروں سے لیس امریکہ کی سینک چھاونی عین الاسد پر جوابی حملہ کیا تھا۔ ایران نے جب سے میزائلی حملہ کیا ہے تب سے امریکی ادھیکاری یہ کہنا بھول گئے ہیں کہ سمست وکلپ میز پر ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ایران نے امریکی ادھیکاریوں کو ان کی گیدڑ بھبکیوں کی واستوکتا بتا دی ہے اور انہیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایران اس پرکار کی ان کی دھمکی سے تنک بھی نہیں ڈرتا۔ اگر ایران امریکہ یا اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے کسی بھی دیش یا سرکار سے ڈرتا ہوتا تو کبھی بھی وشو سامراج کے مقابلے میں آدم ساہس کا پرچے نہ دیتا۔
صدام نے ایران پر جو یدھ تھوپ رکھا تھا اس کے کارن بہت نقصان ہوا، دسیوں ہزار ایرانی شہید ہوئے، اربوں کی سمپتی تباہ ہوئی، پرنتو جنگ سے ایران نے بہت کچھ سیکھا اور دوسرے شبدوں میں جنگ، سختی اور پرتیبند ایران کی پرگتی کے راز ہیں۔ یہ وہی ایران ہے جس پر ایران عراق یدھ کے دوران کٹیلے تاروں کی خریداری پر پرتیبند تھا اور کوئی بھی دیش ایران کو کٹیلے تار یہ کہہ کر نہیں دیتا تھا کہ اس کا بھی پریوگ سینیہ کاریوں کے لیے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عراق تھا اور اسی نے ایران پر حملہ کیا تھا اور اسے ہر پرکار کا ہتھیار خریدنے کی انومتی تھی۔ اور جو دیش ایران کو کٹیلے تار نہیں دیتے تھے وہی دیش صدام کو ہتھیار دیتے تھے۔ دوسرے شبدوں میں، مانواادھیکاروں کی رکشا کا دم بھرنے والے دیشوں کے دوہرے ماپدنڈ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ دشمن کے دباؤ اور پرتیبند ایران کی پرگتی کے رہسیہ ہیں۔ اگر یہ پرتیبند، دباؤ اور سختی نہ ہوتے تو ایران اتنی پرگتی نہ کرتا۔
صدام نے ایران پر جو یدھ تھوپ رکھا تھا اس سے ایران نے یہ سیکھ لیا کہ جب تک وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوگا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی رکشا کا منتر سیکھ لیا ہے اور اسی منتر پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی ایران پر حملے کا دوسساہس نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی ایران پر حملے کے بارے میں سوچے گا وہ کم سے کم 100 بار اس یدھ کے بھیاوہ پریڑاموں کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ دوسرے شبدوں میں، آج اگر کوئی ایران پر حملہ کرنے کا ساہس نہیں کر رہا ہے تو اسے ایران کی سینیہ و رکشا کشمتا کا بہت اچھی طرح سے گیان ہے اور اس کے بھیاوہ پریڑاموں کے بارے میں سوچ کر ایران پر حملے کا وچار دماغ سے نکال دیتا ہے۔
آج امریکہ ایران پر سینیہ حملہ کرنے کے بجائے پرتیبند لگاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایران پر حملے کے نتیجوں سے بہت اچھی طرح اوگت ہے اور تہران کے خلاف نرادھار دعوے کر کے اس پر پرتیبند لگانے کے سوا اس کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے۔ اگر اس کی نظر حملے کے دشپریناموں پر نہ ہوتی تو بہت پہلے ایران پر حملہ کر چکا ہوتا۔
ईरान ने इराक में अमेरिका की सैनिक छावनी पर जो जवाबी हमला किया था उससे अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं को बहुत अच्छी तरह संदेश मिल गया है। इसलिए अमेरिका ईरान के खिलाफ दबाव अधिकतम दबाव की नीति अपनाए हुए है और उसके पिछलग्गु उसकी नीतियों में हाँ मिला रहे हैं।
बहरहाल सद्दाम ने दूसरों के उकसावे में आकर ईरान पर जो हमला किया था उससे बहुत नुकसान हुआ, परंतु उस हमले की वजह से ईरान बहुत कुछ सीख गया। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जंग समाप्त होने के 6 महीने बाद और अपने स्वर्गवास से 3 महीने पहले धर्मगुरुओं के नाम संदेश में कहा था कि जंग में प्रतिदिन हमारे लिए बरकत थी और हर क्षेत्र में हमने उससे लाभ उठाया। हमने जंग में अपनी क्रांति के संदेशों को विश्व के दूसरे देशों में निर्यात किया। हमने युद्ध में ये साबित कर दिया कि हम मजलूम हैं और हम पर हमला करने वाले अत्याचारी हैं। हमने जंग में विश्व के रक्त पिपासुओं के चेहरों से नकाब हटा दी। हमने जंग में दोस्तों और दुश्मनों को पहचान लिया। हमने जंग में ये सीख लिया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हमने जंग में पूरब और पश्चिम की 2 बड़ी शक्तियों की धाक को खत्म कर दिया। हमने जंग में क्रांति की जड़ों को मजबूत किया। हमारे लोगों को जंग में भाईचारे और देश प्रेम का अधिक एहसास हुआ। हमने जंग में पूरी दुनिया विशेषकर क्षेत्र के लोगों को ये दिखा दिया कि वर्चस्ववादी और बड़ी शक्तियों का वर्षों तक मुकाबला किया जा सकता है। अफगानिस्तान की विजय में हमारी जंग की भूमिका है और फिलिस्तीन की विजय में हमारी जंग की भूमिका होगी।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनेई पूरब और पश्चिम की 2 बड़ी शक्तियों द्वारा सद्दाम के समर्थन के बारे में कहते हैं कि जंग के दौरान कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके बारे में दोनों शक्तियां इस हद तक एकमत हों कि वे दोनों युद्ध के एक पक्ष को सैन्य हथियार दें, यानी सद्दाम को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इराक द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध तक इस प्रकार की स्थिति बहुत कम दिखाई देती है और सद्दाम को पश्चिम का राजनीतिक, आर्थिक, यहाँ तक कि किसी सीमा तक सैन्य समर्थन भी प्राप्त था और सद्दाम दूसरी ओर उसे बड़े पैमाने पर पूरब का सैन्य समर्थन प्राप्त था। सद्दाम की पूरी सेना पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के बने हथियारों से लैस थी। उस समय पूर्वी यूरोप वर्षों संधि का हिस्सा और पूर्वी ब्लॉक में शामिल था। ये बहुत अजीब चीज थी। हम जंग में वास्तविक अर्थों में पूरी तरह मजलूम थे। एक बार ईरान का एक अधिकारी व जिम्मेदार कह रहा था कि एक देश से हमने कटीला तार खरीदा था और उसे केवल पूर्व सोवियत संघ से होकर गुजरना था। हम पूर्व सोवियत संघ से गुजरना चाहते थे, परंतु हमें गुजरने की भी अनुमति नहीं दी गई। वो भी एक क्रांतिकारी देश जो इस तरह से अमेरिका के मुकाबले में डटा हो और पूर्व सोवियत संघ ईरान के लिए इस प्रकार की सीमितता उत्पन्न करे, यह हमारे समय का बिंदु है जो कम पेश आता है।
पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक उस समय क्रांति के विरोधी थे जिसके आधार धर्म और इस्लामी मूल्य हों। इसी वजह से वे इस्लामी क्रांति को अपने हितों के खिलाफ समझते थे और उसका विरोध करते थे। दूसरी ओर इसराइल और अरब देश भी ईरान की इस्लामी व जनक्रांति से चिंतित थे, क्योंकि अरब देशों को इस बात की चिंता सता रही थी कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है और कहीं ऐसा न हो कि हमारे देशों की जनता भी ईरान की मुसलमान जनता से प्रेरणा लेकर हमारी गैर लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकारों का अंत कर दे। इसलिए उन्होंने भी इस्लामी लोकतंत्र पर आधारित ईरान की इस्लामी सरकार के खिलाफ सद्दाम का समर्थन करने में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया। परंतु ईरान इराक युद्ध का परिणाम क्या रहा, इसे सब ने अपनी आंखों से देखा।
ईरान की बहादुर सेना ने देश के उन क्षेत्रों को सद्दाम की अतिक्रमणकारी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया जिन पर उसने युद्ध के आरंभ में कब्जा कर लिया था। सारांश ये कि ईरान की 1 इंच भूमि भी इराक के कब्जे में नहीं रही, जबकि सद्दाम को पूरा पश्चिम क्षेत्र के अरब देशों और अवैध ज़ायनी शासन का भी समर्थन प्राप्त था। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अंतिम कार्यक्रम आजकल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आज कल लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम वेब सीरीज और टीवी सीरियलों से फिल्मों को मिलने वाली चुनौतियों की चर्चा करेंगे। मरियम मेहर दादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, सन 2020 में जब पूरे विश्व में मनोरंजन उद्योग ने पहली बार कोविड-19 से जूझना शुरू किया तो लोगों ने बॉक्स ऑफिस पर टिकट और घरेलू मनोरंजन पर एक साल पहले की तुलना में 18% कम खर्च किया। उसके बाद चुनौती भरे 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन सिनेमा उद्योग अभी भी संकट में ही है। 2022 भी आधा बीत चुका है, लेकिन अभी भी मनोरंजन उद्योग स्थिर नहीं हुआ है। पारिवारिक फिल्मों के निर्माण में भारी कमी आई है। आंकड़े बताते हैं कि फिल्मों के शौकीन लोग पहली बार कोविड-19 से अभी तक सिनेमा घरों का रुख नहीं कर पाए हैं। ये सही है कि फिल्मों को देखने वाले भी हैं और सिनेमा घर खाली नहीं है, लेकिन गर्मियों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है और स्थिति निराशाजनक है।
निर्माताओं और आलोचकों की नज़र में स्थिति के लिए सिर्फ महामारी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ बड़ी समस्या कई प्लेटफॉर्मों का उदय और वेब सीरीज की बढ़ती लोकप्रियता है। लोग अब इन प्लेटफॉर्मों तक आसानी से पहुँच रहे हैं और उनके आदि होते जा रहे हैं। अब लोगों की प्राथमिकता पहले की तरह सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखने की नहीं रही है। इस संबंध में एक सिनेमा घर के मालिक का कहना है, पिछले 2 वर्षों के दौरान खर्चों में वृद्धि हुई है और आमदनी कम हुई है, इसलिए लोग मंथली सदस्यता का भुगतान करके अपने मनोरंजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए लोगों को सिनेमा घरों में लौटने के लिए राजी करना हमारे विचारों से कई अधिक कठिन हो गया है।
सन 2021 के आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया में कुल डेटा ट्रैफिक का 82% भाग सिर्फ स्ट्रीमिंग से विशेष है। खुद ये आंकड़ा आश्चर्यजनक है। इस मात्रा में स्ट्रीमिंग के ट्रैफिक का एक और अर्थ है, डेटा ट्रैफिक की मुख्य आय वीडियो और ऑडियो के क्षेत्र से संबंधित है। ये एक अद्भुत आंकड़ा है जिसका लाभ उत्पादकों को कम ही मिलता है, बल्कि इसका मुख्य लाभ प्रसारण कंपनी को पहुंचता है, लेकिन ये रकम कहां खर्च की जा रही है। पिछले कई वर्षों से कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक वेब सीरीज और सीरियलों की बात है तो इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। लोग इन्हें पसंद भी खूब कर रहे हैं। IMDb वेबसाइट की लिस्ट पर अगर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि पहली पंक्ति में फिल्मों की जगह सीरियलों ने ले ली है। फिल्म से सीरियल तक की इस प्रक्रिया को आज सिनेमा की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। ऐसे बड़े निर्देशक जो पहले सीरियल बनाने की इच्छा ही नहीं रखते थे, वे भी अब इधर आने का रास्ता तलाश कर रहे हैं।
इसी तरह कुछ साल पहले तक बड़े एक्टर सीरियलों में कम ही रुचि रखते थे, लेकिन आज वे आगे बढ़कर इनका स्वागत कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने मार्टिन स्क्रोसेस के साथ $160 मिलियन के बजट में एक वेब सीरीज बनाने की घोषणा की है। इसने सभी को चौंका दिया, लेकिन ये फिल्म उद्योग के धीरे धीरे पतन की निशानी है। ऐसे भी कई निर्देशक और निर्माता हैं जिन्होंने अपनी किसी बड़ी फिल्म को वेब सीरीज में बदल दिया है। बाजार की भी यही डिमांड है कि जो फिल्म अधिकतम 2 घंटे के लिए दर्शकों को आकर्षित कर सकती है उसे सीरीज में बदल दिया जाए, ताकि वो दसियों घंटे तक दर्शकों को आकर्षित करती रहे।
20वीं शताब्दी में प्रवेश और तकनीक की प्रगति, विशेष रूप से इंटरनेट के क्षेत्र में ध्यान योग्य प्रगति के साथ ही लोगों के लिए आसान, सस्ता और निश्चित रूप से तेजी से पहुंचने वाला मनोरंजन का प्लेटफॉर्म विकसित हुआ। इंटरनेट पर पुरानी और नई फिल्मों के प्रसारण में वृद्धि और डीवीडी प्लेयर जैसे उपकरणों की आवश्यकता के बिना इनसे लाभ उठाने की सुविधा ने लोगों को इस ओर अधिक आकर्षित किया है। वेब सीरीज को आज के व्यस्त और तेजी से भागने वाले जीवन के लिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि लोगों को कम समय में आकर्षक और रोमांचक सीरीज देखने का मौका मिले और वे उसका आनंद उठा सके। इंटरनेट पर अपलोड होते ही एक साथ पूरी दुनिया में इसका प्रसारण हो जाता है। अब दर्शक पर निर्भर रहता है कि वो अपनी इच्छा और फुर्सत के अनुसार उससे आनंद ले सके। इसकी एक दूसरी विशेषता इसे डाउनलोड करने और साझा करने की सुविधा है, जिसके कारण वर्चुअल स्पेस में इसका प्रसारण तेजी से होता है।
वेब सीरीज और सीरियलों के ऑनलाइन प्रसारण का एक सबसे प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है। ये वेबसाइट एक निश्चित प्रकार के प्रसारण और फिल्मों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करके आज कई अमेरिकी टीवी और फिल्म दिग्गजों को टक्कर दे रही है। हालांकि सामाजिक मूल्यों के साथ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज और फिल्में एक महत्वपूर्ण नैतिक चर्चा को भी जन्म दे रही है। शुरुआत में नेटफ्लिक्स वेबसाइट सिर्फ अमेरिका, उसके बाद अंग्रेजी भाषी दुनिया में सक्रिय थी, लेकिन अब वो विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में सक्रिय है। कई देशों में इसने स्थानीय स्वाद में अंतर्राष्ट्रीय तड़का लगा दिया है। उदाहरण के रूप में नेटफ्लिक्स ने हालिया वर्षों में दुनिया भर के कई देशों में काफ़ी अधिक निवेश किया है और वहाँ के स्थानीय लेखकों और एक्टर्स की सेवाएं ली हैं, लेकिन अपने खास विचारधारा के दायरे में। इस बीच दक्षिण कोरिया, तुर्की, चीन और भारत जैसे देशों में इस नेटवर्क ने सबसे ज़्यादा पैर पसारे हैं। सांस्कृतिक मतभेदों के मद्देनज़र ये सामग्रियां न केवल इन देशों की संस्कृति से अलग हैं, बल्कि अक्सर मौक़ों पर यहाँ के स्थानीय लोगों के रहन सहन और रीति रिवाजों का मजाक बनाया गया है।
इन प्लेटफॉर्मों की गतिविधियों के बारे में एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ये हर सीमा को रौंद देते हैं और फिल्मों में भी जिन सीमाओं का ख्याल रखा जाता है उन्हें भी तोड़ देते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण स्किड गेम वेब सीरीज़ है। ये वेब सीरीज़ पिछले साल 80 देशों में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सामग्री थी। स्किड गेम एक कोरियाई वेब सीरीज़ है जिसने स्पेनिश सीरीज़ मनी हीस्ट के साथ करोड़ों दर्शकों को आकर्षित किया, लेकिन वास्तव में इन्हें आलोचकों की व्यापक प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। इन वेबसाइटों की गतिविधियों के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कंपाउंड गेम सीरीज़ के तहत उन लोगों के जीवन को दर्शाती है जो जीवन के बिल्कुल अंतिम बिंदु पर पहुंच जाते हैं और जिंदगी तथा मौत के खेल में कूदने के लिए बेताब रहते हैं। अपने जीवन को वे दांव पर लगा देते हैं। सीरीज की कहानी हिंसा और खून खराबे से इस हद तक भरी हुई होती है कि कभी कभी ये घृणित दृश्यों में बदल जाती है।
हिंसा और नृशंस हत्याओं के साथ बच्चों के खेल का संयोजन सीरीज की शुरुआत में चौंकाने वाला होता है, लेकिन कुछ एपिसोड्स के बाद दर्शकों को इस तरह की हत्याओं की आदत सी हो जाती है। उस मुद्दे को सामान्य बनाकर पेश करना बहुत खतरनाक है। इन सीरियलों में वृद्धि के साथ ही हम हिंसा के सामान्यकरण की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ ही नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम का दूसरा पार्ट और उसी के आधार पर एक रियलिटी शो बनाने की घोषणा करके ये साबित कर दिया कि उसे सामाजिक मुद्दों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा से ज्यादा लाभ हासिल करना है।
यहाँ ये बिंदु उल्लेखनीय है कि इन प्लेटफॉर्मों की प्रतिस्पर्धा से ये पता चलता है कि भविष्य में इंटरनेट नेटवर्क मनोरंजन उद्योग में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके शक्तिशाली होने के साथ ही सिनेमाघरों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये आने वाले वर्षों में सिनेमा के पतन का एक स्पष्ट संकेत भी हो सकता है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग ने भी, के जिन्हें नेटफ्लिक्स के कट्टर विरोधियों में माना जाता था, इसके प्रति अपनी राय बदल दी है। 2019 में उन्होंने ऑस्कर अकादमी से ऑनलाइन प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था, लेकिन अब एक बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करके वो इस मंच के लिए फिल्मों और श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देख रही है। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।